अथर्व वेद संहिता एक, अथर्वन का अर्थ निरुक्त और गोपथ ब्राह्मण में अथर्वन शब्द की दो प्रकार से व्याख्या की गई है। एक, अथर्वन गतिहीन या स्थिरता से युक्त योग निरुक्त के अनुसार थर्व धातु का अर्थ है गति या चेष्टा, अतः अथर्वन का अर्थ है गतिहीन या स्थिर। इसका अभिप्राय है कि जिस वेद में स्थिरता या चित्त वृत्तियों के निरोध रूपी योग का उपदेश है वह अथर्वन वेद है। दो, गोपथ ब्राह्मण में अथर्वन अथर्वा शब्द अथर्वाक का संक्षिप्त रूप माना गया है। अथ धन अर्वाक बराबर अथर्वा। गोपथ ने इसका अभिप्राय यह दिया है, समीपस्थ आत्मा को अपने अंदर देखना या वह वेद जिसमें आत्मा को अपने अंदर देखने की विद्या का उपदेश है। अथर्ववेद में ऐसे अनेक सूक्त हैं जिनमें आत्मविद्या, आत्मा, ज्येष्ठ ब्रह्म, ब्रह्म विद्या, उच्छिष्ट ब्रह्म, महद ब्रह्म और ब्रह्म विद्या का विस्तृत वर्णन है। इस प्रकार अथर्ववेद योग साधना, चित्त वृत्ति निरोध, ब्रह्म की प्राप्ति आदि विषयों से संबद्ध वेद माना जाता है। अथर्ववेद का दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप सतपथ ब्राह्मण का कथन है कि प्राण अथर्वा है। इसका अभिप्राय है कि प्राण शक्ति को प्रबुद्ध करना और प्राणायाम के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति करना। गोपथ ब्राह्मण में स्पष्ट किया गया है कि उस आत्म तत्व को अपने अंदर देखना और उसे प्राप्त करना अथर्ववेद का लक्ष्य है। गोपथ ब्राह्मण ने एक अन्य व्याख्या भी की है कि अथर्ववेद चांद्रवेद है, इसका संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा की ज्योति और शीतलता प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। इसका अभिप्राय है कि यदि ऋग्वेद आग्नेय अग्नि तत्व प्रधान वेद है तो अथर्ववेद सोमीय सोम तत्व प्रधान वेद है। यदि ऋग्वेद उष्मा प्रगति और स्फूर्ति देता है तो अथर्ववेद शांति सामंजस्य सद्भावना और सौम्य गुणों का आधान करता है जिससे ब्रह्म की प्राप्ति हो सके। ब्रह्म प्राप्ति की विधि का विस्तृत विवरण अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 2 मंत्र 26-33 में दिया गया है। दो, अथर्ववेद का महत्व। अथर्ववेद कई दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्य बातें ये हैं। एक, यह वैदिक दर्शन का सबसे पुष्ट एवं प्रामाणिक स्रोत है। आरण्यक, उपनिषद आदि में प्राप्य दार्शनिक चिंतन एवं विचार अथर्ववेद का ही विकसित रूप है। दो, वैदिक सभ्यता और संस्कृति के लिए अथर्ववेद चारों वेदों में सबसे अधिक उपयोगी है। वेदकालीन सभ्यता और संस्कृति का जितना विशद वर्णन अथर्ववेद में प्राप्य है उतना अन्य किसी वेद में नहीं है। तीन, अथर्ववेद सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का सबसे सुंदर चित्रण करता है। चार, अथर्ववेद एक प्रकार से विश्वकोश है, इसमें वेदकालीन सभ्यता संस्कृति ज्ञान और विज्ञान का पूर्ण संग्रह है। पांच, अथर्ववेद में उस समय प्रचलित रीति रिवाज प्रथाएं मान्यताएं कतिपय अंधविश्वास रूढ़ियां कृत्या प्रयोग अभिचार कर्म सम्मोहन वशीकरण विविध मणियां जादू टोना अरिष्ट निवृत्ति पाप मोचन शकुन विचार तथा विविध जड़ी बूटियों आदि का विस्तृत उल्लेख है। इसमें कई विरोधी गुणों का समन्वय है। यह एक और ब्रह्मवेद है तो दूसरी ओर क्षत्रवेद, यह एक ओर दार्शनिक विचार प्रधान वेद है तो दूसरी ओर यह स्त्रियों और शूद्रों का वेद माना गया है। एक ओर इसमें अध्यात्म चर्चा है तो दूसरी ओर जादू टोने और कृत्या प्रयोग का इसमें वर्णन है। सात, यह सार्वजनिन वेद है, इसे जनता का वेद कह सकते हैं। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्रियों आदि को समान रूप से स्थान दिया गया है। आठ, साहित्य समाज का दर्पण है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण अथर्ववेद है। नौ, अथर्व परिशिष्ट और स्कंद पुराण में वर्णन है कि अथर्ववेद के मंत्रों में शक्ति है और उसके मंत्रों के जप से इष्ट सिद्धि होती है। दस, अथर्ववेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जो लौकिक और पारलौकिक दोनों दृष्टि से उपादेय है। अतएव सायण ने अथर्व भाष्य भूमिका में कहा है कि यह लौकिक और पारलौकिक दोनों फल देने वाला है, अन्य तीन वेद केवल पारलौकिक फल देने वाले हैं। 11, जयंत भट्ट ने न्यायमंजरी में अथर्ववेद को प्रथम स्थान देते हुए कहा है कि चारों वेदों में यही सर्वोत्कृष्ट वेद है, यह सर्व कार्य साधक है, सर्वलौकिक है और सार्वजनिन है, अतः सर्वप्रथम है। 12, यज्ञ के दो पक्ष हैं, वाचिक और मानस, अन्य तीन वेद वाचिक पक्ष का संपादन करते हैं, अथर्ववेद मानसिक पक्ष की पूर्ति करता है। तभी यज्ञ पूर्ण होता है। अतएव ब्रह्मा यज्ञ का अधिष्ठाता होता है, वह अथर्ववेदवित होता है। 13. शांति और पौष्टिक दोनों प्रकार के कर्मों का संपादन केवल इसी वेद से होता है। 14. देशभक्ति, देश प्रेम और देश के लिए बलिदान होने की संभावना का सर्वथा सुदृढ़ प्रतिपादन इसी वेद के पृथ्वी सूक्त में हुआ है। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, पृथ्वी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। वयम तुभ्यं बलिहृतः स्याम, हम मातृभूमि के लिए बलिदान हों, आदि। 15. अथर्वेद के महत्व के विषय में प्रोफेसर मैकडॉनल्ड का कथन है कि सभ्यता के इतिवृत्त के अध्ययन के लिए ऋग्वेद की अपेक्षा अथर्वेद में उपलब्ध मान सामग्री कहीं अधिक रोचक एवं महत्वपूर्ण है। 3. अथर्वेद के विविध नाम। अथर्वेद में विभिन्न ऋषियों के दृष्ट मंत्र हैं तथा अनेक विषयों का प्रतिपादन है, अतः इसके अनेक नाम पड़े हैं। अथर्वेद तथा अन्य ग्रंथों में अथर्वेद के ये नाम प्राप्त होते हैं। 1. अथर्वेद, अथर्वन ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्वेद पड़ा। इसमें अथर्वा ऋषि एवं उनके वंशजों द्वारा दृष्ट मंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। इन मंत्रों की संख्या 1772 है। 2. अंगिरस वेद, गोपद ब्राह्मण में अंगिरस, अंगिरा ऋषि और उनके वंशजों द्वारा दृष्ट होने के कारण इसे अंगिरस वेद कहा है। इनके दृष्ट मंत्रों की संख्या 420 है। 3. अथर्वांगिरस वेद, अथर्वेद का प्राचीन नाम अथर्वांगिरस वेद भी है। इसमें अथर्वा और अंगिरा ऋषि के तथा उनके वंशजों के दृष्ट मंत्रों का संकलन है, अतः इसे अथर्वांगिरस वेद कहते हैं। अथर्वेद में भी इसका यह नाम मिलता है। दोनों ऋषियों के समन्वित संकलन को यह नाम दिया गया है। 4. ब्रह्मदेव, अथर्वेद का यह प्राचीन नाम ब्रह्मवेद है। अथर्वेद में इसको ब्रह्मवेद कहा गया है। गोपद ब्राह्मण में भी इसे ब्रह्मवेद कहा गया है। अथर्वेद में ब्रह्मा के द्वारा दृष्ट मंत्रों की संख्या 863 है। 5. भृंगव गिरोवेद, गोपद ब्राह्मण में अथर्वेद को भृंगवंग गिरोवेद भी कहा गया है। भृगवंग गिराह और उनके वंशजों के द्वारा दृष्ट मंत्रों की संख्या 548 है। 6. क्षत्रवेद, शतपथ ब्राह्मण में अथर्वेद को क्षत्रवेद कहा गया है। इसका कारण यह है कि इसमें राजाओं एवं क्षत्रियों के कर्तव्यों का विशेष रूप से वर्णन है। 7. भैषज्य वेद, अथर्वेद में आयुर्वेद चिकित्सा औषधियों आदि का बहुत वर्णन है, अतः इसे भैषज्य वेद कहते हैं। अथर्वेद में इसे भेषजा कहा है। 8. छंदो वेद, अथर्वेद का एक प्राचीन नाम छंदो वेद या छंदस है। अथर्वेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद में इसे छंदस नाम दिया गया है। छंद प्रधान वेद होने के कारण इसे छंदस कहा गया है। 9. मही वेद, अथर्वेद में इसे मही कहा गया है। इसमें महति ब्रह्म विद्या का वर्णन है तथा मही पृथ्वी, पृथ्वी सूक्त का विशेष गुणगान है। 4. अथर्वेद की शाखाएं। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में नवधाथर्वर्णो वेद कहकर अथर्वेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। प्रपंच, हृदय, चरण, व्यूह और सायण की अथर्वेद भाष्य भूमिका में भी 9 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु नामों में भेद मिलता है। सायण द्वारा उल्लिखित नाम अधिक उपयुक्त प्रतीत होते हैं। ये नाम है पैपला, तौद, मौद, शौनकीय, 5 जाजल, 6 जलद, 7 ब्रह्मवद, 8 देवदश, 9 चारण वैद्य, अथर्वर्ण परिशिष्ट और चरण व्यूह में भी ये नाम है। केवल तौद के स्थान पर स्तौद नाम है। इनमें से केवल 2 शाखाएं ही संप्रति उपलब्ध हैं, 1 शौनकीय, 2 पैपलाद, 1 शौनकीय शाखा। आजकल प्रचलित अथर्वेद संहिता शौनकीय शाखा ही है। इसमें 20 कांड, 730 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। इसमें सबसे बड़े 3 कांड हैं, कांड 20 958 मंत्र, कांड 6 454 मंत्र, कांड 19 453 मंत्र। सबसे छोटा कांड 17वां है। इसमें केवल 30 मंत्र हैं। अथर्वेद में भी यजुर्वेद के तुल्य गद्य अंश हैं और यह पूरे ग्रंथ का लगभग षष्ठांश 1/6 है। 50 से अधिक सूक्त गद्य में हैं। पूरा 15वां और 16वां कांड गद्यमय है। अन्य कांडों में प्रायः 30 सूक्त गद्यमय है। 2. पैपलाद शाखा, इस शाखा की संहिता पैपलाद संहिता है। काश्मीर में शारदा लिपि में प्राप्त एक पांडुलिपि के आधार पर प्रोफेसर ब्लूमफील्ड ने 1901 ईस्वी में अंग्रेजी अनुवाद के साथ इसे प्रकाशित किया था। बाद में डॉक्टर रघुवीर ने भी इसका एक सुंदर संस्करण प्रकाशित कराया था। यह संहिता अपूर्ण ही प्राप्त है। पतंजलि ने महाभाष में अथर्वेद का प्रथम मंत्र शम नो देवीर भिष्टय दिया है। शौनकीय में यह मंत्र कांड 1 सूक्त 6 का प्रथम मंत्र है। पैप्लाद संहिता में यह अथर्वेद का प्रथम मंत्र है। इससे ज्ञात होता है कि पतंजलि के समय में पैप्लाद संहिता का प्रचलन था।